श्लोक क्रमांक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक क्रमांक अध्याय दो गीता का सार श्लोक क्रमांक 58 58। यदा संहरते चायम् कूर्मो अंगानि वसर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैं पारायण नहीं करवा रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा समय मिल जाए समझाने का। या दो श्लोक की चर्चा करनी है और उम्मीद है कि एक घंटा लग जाएगा, इसलिए हम पारायण नहीं करवा रहे। एक बहुत अच्छा टीचर अच्छे उदाहरण देता है, तो भगवान कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो ये आसीत शब्द का उत्तर है। किम आसीत, वो कैसे बैठता है, कब एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, समझ में आ रहा है? उस प्रश्न के प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी चेतना शुद्ध हो गई है, वो कब बैठता है, कब निष्क्रिय होता है, और कैसे निष्क्रिय होता है, भगवान क्या समझा रहे हैं उदाहरण से। कछुआ जब खतरा देखता है तो अपने सॉफ्ट अंगों को अंदर कर लेता है, अपने खोल के अंदर कर लेता है, और इस प्रकार से वो खतरे से बच जाता है। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक हैं 58 से लेकर 63, ये सभी आसीत शब्द पे ही व्याख्या करेगी। 58, 59, 60, 61 और 63 किस प्रकार से व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है इंद्र तृप्ति के कार्यों के प्रति। पहली चीज, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को मैं सेकंड फेज में चर्चा करूंगा। पहले जो मुझे मन में हमारे प्रिपेयर करके लाए उसको चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लेके भी चर्चा करेंगे। कछुए के उदाहरण पे विचार करें तो कछुए का शरीर जो है वो बहुत कोमल होता है, लेकिन उसका जो खोल है वो बहुत हार्ड होता है। उस पर अगर हाथी भी पाँव रख देगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब ये समझना चाहिए, आत्मा पूरी तरह असंग है, उसका कोई शरीर से संपर्क नहीं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बहुत कमज़ोर हैं, ये वीक पॉइंट्स हैं हमारे। अगर इनके द्वारा हम इंद्रिय भोग करते हैं तो फिर हमारी जो माया से लड़ने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है, मन में भोग की वासनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। यदि हमने कोई वस्तु देखी नहीं है, कुछ सुना नहीं है, तो उसके बारे में चिंतन कर ही नहीं सकते। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझते हुए अगर भोग के विषय आते हैं तो उनसे अपनी इंद्रियों को निवृत्त कर लेता, खींच लेता है। समझ में आई बात, ये कछुआ वाला एग्जांपल क्यों? और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर दो उदाहरण आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। एक है बॉक्सिंग का, घूसने का जो कंपटीशन होता है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सब जगह मारो उसको जो आपका प्रतिद्वंदी है, तो ये देखो कि उसको सबसे अधिक दर्द कहाँ होता है, और जहाँ सबसे अधिक दर्द होता है फिर उसके बाद उसको वहीं मारते रहिए, वहीं मारते रहिए, वहीं मारते करते तो धाराशाही हो जाता है। इस चीज़ को भगवान आगे समझाएंगे ध्यायतो विषयान पुंसा वाले श्लोक। यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्त हैं या व्यक्तियाँ हैं, व्यक्ति लोग हैं, उस सभी को एक ही वस्तु आकर्षित नहीं करती है। माया के बहुत सारे विषय वस्तुएं हैं, और हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसको अलग अलग वस्तुएं आकर्षित करेंगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ब्रह्मचारियों को ज्वेलरी आकर्षित नहीं करती, हमको बल्कि ये लगता है कि ये गोल्ड ज्वेलरी से कैसे को सुंदर लग जाए। तुलसी माला भी आकर्षित नहीं करती है, हम उसको बस अपने शुद्धिकरण के लिए पकड़, ये नहीं कि नए नए डिज़ाइन बना बना करके भेज, नहीं आता वो विचार ही नहीं आता। तो ये इस प्रकार का आकर्षण माताओं को हो सकता है। तो हर व्यक्ति, हाँ ब्रह्मचारियों को प्रसादम बहुत अच्छा लगता है, तो ये उनकी इंद्रिय तृप्ति है।
तो खैर,
तो हर व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का जो विषय है वो अलग अलग होता है, और ये बात माया बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानती है। दुनिया में कोई जाने ना जाने आपको क्या वीक पॉइंट है माया जानती है। उसके पर हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि माया इसी हम इसीलिए माया से नहीं जीत सकते क्योंकि माया के ये जानती है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और उनके पास सारी शक्तियाँ हैं उस वीक पॉइंट पर हिट करते रहने। लेकिन दो चीज़ हैं जो माया के वीक पॉइंट हैं, वो है भगवान का नाम और भक्तों का संग। अगर इसको हम अच्छे से करते हैं, भगवान के नाम का शरण लेते हैं, जब अच्छे से करते हैं और भगवान के भक्तों का शरण संग में रहते हैं, उनका संग करते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम माया से पार पा सकते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण जो है वो हमारी इंद्रियों के बारे में। आप लोग रडार समझते हैं, अच्छा रडार ना समझें, आप लोग वाईफाई समझते हैं। हाँ, वाईफाई सब समझते हैं क्योंकि स्मार्टफोन है आपके पास। तो आप देखिए, जैसे ही आप वाईफाई को ऑन करते हैं अपने फ़ोन में, तो वाईफाई कहता है स्कैनिंग, और जितने भी नेटवर्क होते हैं उनको पकड़ने लग जाता है, पकड़ने का प्रयास करता है। अब इस उदाहरण को ज़रूर स्मरण कीजिएगा क्लास के बाद, और आप देखिएगा इस दरवाजे के बाहर निकलने के बाद घर तक पहुंचते हुए या पूरे हफ्ते में आप ऑब्जर्व करते रहिए कि आपकी इंद्रियां ऐसे कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही। हमारी इंद्रियां एक रडार की तरह या हमारे फ़ोन के वाईफाई रिसीवर की तरह कार्य करती रहती है और हमेशा ऑन रहती हैं। अगर हम सो नहीं रहे हों तो आँखें कुछ रूप देखना चाहती हैं, कान कुछ शब्द सुनना चाहता है, और वो कंडीशन अवस्था में भौतिक ही चीज़ों के प्रति आसक्त हो। मैं इस पर और ज़्यादा खोल खोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, सब व्यक्ति जानते हैं मैं क्या बोल। आप नाम जप करना चाहते हैं, अब मान लीजिए आप गार्डन में जा रहे हैं, चलिए सिर्फ अच्छा हल्के उदाहरण ले रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ चिड़ियों की चहचहाट अच्छी लगती है, तब तो वहाँ ध्यान जाएगा, ये ध्यान जाएगा कहाँ पर फूल उग रहे हैं अच्छे, कुछ सुंदर दृश्य नजर आ रहा है, चाहे वो सत्वगुण का आकर्षण हो सकता है। रजोगुण के आकर्षण और रूपों के प्रति होते हैं, तमोगुण के आकर्षण और रूपों के प्रति होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां लगातार भोगों की तरफ ढूंढती रहती हैं, और आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अगर हमारा मन इन इंद्रियों के बहाव की वजह से भगवान से अलग होता जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं जहाँ भी आपका मन जा रहा है वापस उसको भगवान में केंद्रित करें। तो ये हमारे वीक पॉइंट हैं, और इस कारण से अपनी इंद्रियों को अंदर खींचना ये हमारे लिए आवश्यक है। खींचने का मतलब ये नहीं कि आंखें अंदर घुसा लेंगे, कहने का अर्थ ये है कि जो रूप या फिर जो दृश्य या जो शब्द सुन करके हमारी बहिर्मुखता बढ़ जाए, भगवान से विमुखता बढ़ जाए, ऐसे रूपों से हमको बचना चाहिए, ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे पिक्चर देखने से भगवान का स्मरण से ना होता है, अखबार पढ़ने से नहीं होता स्मरण, तो इससे चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो कि समाज में इतने बिलबोर्ड्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो ऑलरेडी हमारे मन पे थोप रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन खुद खरीद खरीद करके विषय भोग की वस्तुएँ मन में नहीं डालनी चाहिए। इससे हमारी रेजिस्टिव पावर कह लीजिए, रेजिस्टिव पावर क्या बोलेंगे, प्रतिरोधात्मक क्षमता ये कम हो जाती है माया से। दूसरा बात, मन कैसे हमें उल्लू बनाते हैं, उल्लू मतलब मूर्ख बनाते हैं। सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं मैंने कोई दृश्य देखा है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको ये तो याद रहता है ना कि आपने ये दृश्य देखा था। यानी आपको भले ही लगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से कुछ हो गया। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी मैं न्यूज़ नहीं देखता और न्यूज़ देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन में क्रोम नाम का ऐप है, अभी तो वो डिसेबल किया हुआ है, तो उसमें पहले कुछ भी नीचे न्यूज़ नहीं आती थी, और जब मैंने डिसेबल नहीं किया मुझे कुछ सर्च करना है तो बार बार जैसे उसको खोलेंगे तो कुछ न्यूज़ आ जाती है। तो एक बार देखा, मुझे लगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार करते करते फिर न्यूज़ देखने की इच्छा आने लगी। अब ये सूक्ष्म हुआ कैसे? पहले मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी बार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में पड़ने लगे, तो इसलिए हमारा फिर मैंने से कट करके डिसेबल कर दिया, वो सामने नहीं आया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सोचेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 10-15-20-25 बार फिर आप सोचेंगे आज सुबह से मैंने न्यूज़ देखी नहीं, तो फिर हम उस पर आसक्त होने लग जाते हैं, तो बहुत खतरा है। ऐसे ही किसी भी भौतिक दृश्य के बारे में या भौतिक कथा के बारे में सुनने की आदत पड़ सकती है, जिसमें बहुत चतुर रहना चाहिए। माया कैसे घुसना चाहती है आपके डिफेंस में, ये व्यक्ति को सतर्क करना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जब भी हम अपने इंद्रिय भोग के विषयों पर ध्यान लगा देते हैं तो एक संस्कार बन जाता है, और संस्कार की वजह से फिर आगे हमारे मन में वो उसके प्रति इच्छाएं आने लगेंगी। तो इस डिफेंस से हमको बचना चाहिए, और यही बात भगवान ने बता रहे हैं, अपने इंद्रिय विषयों से अपने मन को खींचना। ओके, अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे और थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे। तात्पर्य को देखिएगा, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, एक भक्त हैं जिनको प्राणिक हीलिंग आती है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी व्यक्ति को देते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी रहती है तो वो ऐसे लगता है उसको कि मैं तो सही चल रहा हूँ, लेकिन जब पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है तो बहुत खलबली होने लगती है उसके शरीर, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उसके घर से निकलना नहीं चाहती। जैसे आपके घर में कोई किराएदार है और ख़राब किराएदार है, जब तक आप उसे निकालेंगे नहीं तब तक वो उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब निकालने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी परेशानी करेगी। यहाँ से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य जो है उसको हमने खूब बढ़िया से खिलाए पिलाए कई जन्मों से। अब जब आप भगवान का भजन करने का प्रयास करेंगे तो ये इंद्रियाँ, ये जो भोग के विचार हैं, ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत एक्चुअली शुरुआत में बहुत परेशान करेंगे। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ भक्त है वो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि इनको फीड करना बंद कर देता है, इनको भोग देना बंद कर देता है। इसके ऊपर में बहुत सुंदर एग्जाम्पल राधेश्याम प्रभु ने बताया था कि किस प्रकार से एक शेर को ट्रेनिंग दी जाती है। इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वो सर्कस का मास्टर होता है, रिंग मास्टर बोलते हैं, वो ऐसे छड़ी मारेगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। तब शेर को लाया जाता है जंगल से, तो जब उसको पिंजरे में बांध देते हैं तो बहुत गुर्राता है, वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसको भूखा रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना दिया जाता है जब वो आज्ञा मानता है, और ऐसे करके फिर उसको ट्रेनिंग मिल जाती है और एक छड़ी से ही एक शेर जो है वो ट्रेनअप हो जाता है, आज्ञा मानता है। तो मन को नियंत्रित करने का यही तरीका है। मन को जब आप जप करने का प्रयास करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो हजार बहाने मारेगा, नींद आ रही है, अभी मन नहीं कर रहा, आज नहीं, कल छोड़ो, अगले जन्म में करेंगे, एक माला भी करने से नरक नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा, 16 माला करने की क्या ज़रूरत, अरे तुम्हारे परिवार है, बच्चे हैं, तुम अभी भजन मत करो, अभी तो तुम यंग हो, जब वृद्ध हो जाओगे तो अब देखेंगे कि जब आप भजन करने का प्रयास करेंगे तो हजार तरह के बहाने मन बोलने लगता है, और आप जब थोड़ा डांट करके करेंगे नहीं करना ही है तो रिवोल्ट भी करता है, रिवोल्ट समझते हैं मतलब विद्रोह करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार इंद्रियों को नियोजित करना एक योगी को आना चाहिए। ये नहीं है कि जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरी इंद्रियां बोल रही हैं, हम उसके अनुसार चलते रहे, ऐसा चलेंगे तो भक्ति में करने में हमें दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कार चलाते हैं या आप लोग स्कूटर चलाते हों, जो भी है, तो स्टीयरिंग जहां जाना चाहती है वहां जाने देते हैं या स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं, नेचुरली कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ही है कि आपको शक्ति लगानी पड़ेगी, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि मेरी गाड़ी गड्ढे में नहीं जा रही। उसी प्रकार से स्टीयरिंग जो हमारी इंद्रियों की है उसमें भी हम अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं हमारा फिर मन चला जाएगा। इसके बारे में आगे भी भगवान बताएंगे कि एक भी इंद्रिय पे अगर मन फोकस करता है और इंद्रिय के हम अनुसार चलते हैं तो मन फिर हमारा नर्क की तरफ हमको लेके जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंद्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार सेवा में लगाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपनी इच्छा का मतलब वो इच्छा शास्त्र के अनुसार है, अपनी इच्छा का मतलब नहीं है कि मेरी इच्छा टीवी देखने की कर रही है तो पत्ते खेलने के कर रही है, शराब पीने के कर रही है, तो मैं इंद्रियों को लगा रहा हूँ अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब वो इच्छा भी गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। यह उत्तर है इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है, किस प्रकार बैठता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है, वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो संबंध हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को इंद्रियों की क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। ओके, इस चीज़ को समझना चाहिए कि करो और ना करो, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने उदाहरण पहले दिया है, आप लोग उस उदाहरण से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कृष्ण भावना में कोई भी आ सकता है, क्या ये सही है? नहीं, बहुत कोई सुकृतिवान होगा तो वो आएगा, सारे लोग नहीं आते। आने के बाद सब लोग रह सकते हैं, क्या ये सही है? नहीं, आने के बाद सारे लोग क्यों नहीं रह पाते उसका ये उदाहरण, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति भी करते रहना चाहते हैं और भक्ति भी करते रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप पोरबंदर समझते हैं, पोर्ट को हम लोग पोरबंदर बोलते हैं, बंदरगाह, पता नहीं इसका ये शब्द का अर्थ क्या है बंदरगाह, बट आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये नाव पे आप बैठे होंगे, तो यदि आप नाव पे बैठते हैं तो एक सिचुएशन ये आती है जिसमें एक टांग आपकी तट पे होती है और एक टांग आपकी नाव के ऊपर रहती है, तो आप कितनी देर तक इस स्थिति को रख सकते हो? बहुत थोड़ी देर तक। या तो आप सोच लीजिए कि मुझे तट पे रहना है, और या फिर आप सोच लीजिए कि मुझे नाव में जाना है, और नहीं तो हम पानी निकल जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को ये बातें बहुत कठोर लग सकती हैं सुनने के लिए, लेकिन ये उदाहरण आपके मन में छप जाना चाहिए, हम सभी के, आपके नहीं मेरे भी, सबके मन में छप जाना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भावना एक साथ नहीं चल सकती। ये तराजू की तरह नहीं है कि आधे हम 50% यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति रखते हैं, 50% कृष्ण भावना रखते हैं, बैलेंस होकर चलेंगे, बढ़िया होगा। वो ठीक से चलता नहीं है। जनरली फिर इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हमारी कृष्ण भावना को ढकने लग जाएंगी। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई शाम को टीवी देख के सोता है तो सुबह उसको उठ करके जप करने का मन कैसे करेगा? नेचुरल। मेरा तो कितनी बार का अनुभव है, पहले मैं लोगों को शिक्षा दिया करता था, बाद में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया कि जो विचार जो चर्चा मैं शाम को करके सोता हूँ वही उन्हीं विचारों से हम सुबह उठते हैं। इसीलिए शाम के समय आप भगवद गीता या भागवत इत्यादि के विषयों पर चर्चा करें या उनको एटलीस्ट पढ़ करके सोएं, तो इन विचारों के संग आप सुबह उठेंगे। तो अगर हम बार बार अपनी इंद्रियों को बार बार और लगातार भगवान में लगाए रहते हैं तो हमारी चेतना बहने लगती है भगवान की तरफ। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हमको इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं अच्छी ही नहीं लगती। जैसे मेरा अनुभव ये हुआ था उस न्यूज़ को पढ़ने से कि इसको पढ़ने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। शुरुआत के 2-3 पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा एक्साइटमेंट रहता था, बाद में बोरिंग लगता था, इसमें कुछ खास मतलब तत्व नहीं है, लोग अपनी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। और जब अभी मैं आज जैसे मुझे भगवान के विग्रहों को लाना था जिनकी पेंटिंग हो गई, तो धूलने का कारण ये था कि वो मैं जब क्लास प्रिपेयर कर रहा था तो प्रभु जी के क्लास सुन रहा था, आचार्यों की कमेंट्री देख रहा था, उसमें भूल गया मैं कि मुझे भगवान की सेवा में भूल गई, लेकिन मैं बहुत विभोर हो गया था इस सारे एनालिसिस को पढ़ करके सुन करके। तो जो संतुष्टि हमको भगवद्गीता पढ़ने में आती है, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वो भौतिक वार्ता भौतिक चर्चाओं में नहीं आती। तो अब ये मेरे, मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शास्त्रों को पढ़ते रहने से, उन चर्चाओं में संलग्न होने से, मैं उस दोनों चीज़ों के अनुभव को महसूस कर पा रहा हूँ। तो हम प्रयास ये करते हैं कि उन चीज़ों से हम और अधिक दूर रहें, क्योंकि उससे मुझे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। वो शुरुआत में रजोगुण के कार्य हैं, इस कारण शुरुआत में भले थोड़ा सा आपको लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बाद में वो बिल्कुल बोरिंग हो जाता है, उसमें कोई संतुष्टि नहीं होती। ठीक है, अब एक भक्त के इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को कंट्रोल करने में, और योगी के इंद्रियों को कंट्रोल करने में क्या अंतर है, जरा देखिएगा। एक योगी जो होता है वो अपनी इंद्रियों को ऐसे दबा के रखता है जैसे सर्प, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था सर्प का, सर्प को आप गले से कस के पकड़ लीजिए तो आपने सर्प को कंट्रोल कर लिया ना, एक दृष्टि से यस। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान कहीं जाएगा, वो सर्प आपको काट लेगा, उसका जहर कम नहीं होगा। और अगर सर्प के दांत तोड़ लिए जाए और वो बाद में काटे भी, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा जो उदाहरण है ये है भक्तों का। भक्तों का उदाहरण क्या है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो सर्प की भांति हैं और लगातार वो हमें काटने का प्रयास कर रही हैं, यानी कि हमको इंद्रिय विषय रूपी जहर देने का प्रयास कर रही हैं। आप लोग उदाहरण समझ रहे हैं ना, हमारे चित्त में बार बार डसेंगी, हमको इंद्रिय विषय, अपनी इंद्रिय को इंद्रिय विषय में लगाते हैं तो जहर मिलता है हमारे मन को, भोग की वासना बढ़ जाती है। इन शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं या इन्हें भी समझाना पड़ेगा? ठीक, तो अब भक्तों का क्या तरीका है, भक्त लोगों को भगवान की कृपा से आध्यात्मिक विषय वस्तु मिल जाती है। जैसे इस समय आप लोग एक आध्यात्मिक शब्द सुन रहे हैं, भगवत चर्चा, या अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो इसमें भी सुख मिलता है, लेकिन ये हमारे मन को अमृत दे रहे हैं। आपने महसूस किया होगा ना कि आप कथा के बाद बहुत हृदय में शांति अनुभव करते हैं, इसीलिए बहुत बार लोग जब थके होते तो सो भी जाते हैं क्लास में। तो यानी कि हमारी जो तरीका है, भक्तों का तरीका है, वो क्या है, उन सर्पों को मंत्रों के द्वारा मोहित कर दिया जाए। आज सुबह प्रभुपाद जी के लेक्चर बहुत सुंदर वो बता रहे थे, कह रहे थे कि उनका जीवन का अनुभव है, इनके एक मित्र थे, इनका नाम था मिस्टर घोष। तो उन्होंने देखा कि एक मुसलमान व्यक्ति आया, जिन लोगों को कुछ जहर, कुछ सर्प ने काट लिया था, उसने कुछ मंत्र बोले और जहर उतर गया। तो उन्होंने उसको बाद में जाकर, उनके मित्र, उनकी कुछ शंका थी और वो उस व्यक्ति के पास गए और उनको उन्हें बोला, मुझे लगता है कि आपके जो सर्प हैं उनके दांत नहीं हैं या वो जहरीले नहीं हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो मंत्र के द्वारा मोहित हैं। और उन्हें प्रमाण देने के लिए अपने पिटारे खोल दिए। अब उन लोग की हालत ख़राब, कि पूरे आंगन में जगह जगह सर्प थे। तो फिर उसने बोला कि जब तक मैं मतलब वो व्यक्ति उपस्थित है और अपने मंत्र से मैं इनको रोके हुआ हूँ, तो आपको ये काटेंगे नहीं। तो यही उदाहरण प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों के लिए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इंद्रियों को भगवान की सेवा करने की पूर्ण मौका मिलता है। कानों से भगवान के बारे में सुन सकते हैं, मन से भगवान के बारे में सोच सकते हैं। स्पेशली जब मुझे क्लास प्रिपेयर करना होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि एक घंटा डेढ़ घंटा पूरा आपको मुझे बहुत फोकस करना पड़ता है, ये बोलूँगा उसके बाद, ये बोलूँगा उसके बाद, ये बोलना है, तो पूरा चित्त एकदम हमारा जो है भगवद्गीता की भावना से भावित हो जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अब सुनने वालों को कितना समझ में आएगा उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुद का बहुत एनरिचमेंट हो जाता है इसके द्वारा, तो ये बहुत अच्छा है। तो एक डेढ़ घंटा जो भी है वो आपका भगवान की सेवा में लग जाता है। ये जैसे हम देखते हैं हमारे मंदिर में जब फेस्टिवल होता है और हमारे स्टूडेंट्स आते हैं कभी सेवा करने के लिए, तो सुबह से शाम तक वो सब सब्जी काटते हैं, अन्य अन्य सेवाओं में लगे रहते हैं और प्रायः खाने के लिए भूल ही जाते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है, जन्माष्टमी की जब हम लोग फेस्टिवल करते थे IIT में, तो वहाँ पे भी सुबह से शाम तक हम लोग खाते ही नहीं थे, तो साइकिल लेकर के इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। तो मन क्योंकि भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इस कारण से मन भोग के विचारों से निवृत्त रहता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही तरीका हमें अपनाना है। और अपने घर में जाकर के आप सोचिए कि मैं कैसे भगवान की सेवा अधिक से अधिक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे थे, हमें ये इमीडिएट नहीं करना चाहिए कि हम एक जगह बैठ के बस जप करेंगे, वो हमारे लिए भी संभव नहीं है। 16 माला तक आने का प्रयास करें और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। आज एक बड़ी विशिष्ट चर्चा हो रही है, इस सेवा शब्द पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि सेवा होती कब है। कार्य तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन सेवा तब होती है जब हमें उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने की इच्छा हो। अभी सकाम और निष्काम हो सकती है। सकाम मतलब आपसे कुछ फायदा चाहिए, आप उससे कुछ फायदा चाहते हैं इसलिए आप संतुष्ट करना चाहते हैं। सारे दुकानदार तो बिजनेसमैन इसीलिए हैं। लेकिन हम भक्ति की जो बात कर रहे हैं, हम निष्काम सेवा की बात कर रहे हैं। निष्काम सेवा तब होती है जब हम भगवान से कुछ भौतिक ना मांगे और उनकी सेवा करने का प्रयास करें। और यदि आपके घर में भगवान की कृपा से धन धान्य है तो आप देखिए भगवान ने आपको बहुत अच्छी सुविधा दी है भगवान से निष्काम संबंध स्थापित करने में। भाई रोटी पानी तो सबको मिल ही रहा है, आज नहीं होगा एकादशी है, लेकिन वैसे ही सबको रोटी पानी मिल रहा है ना, कोई मुझे ऐसा तो गरीब नहीं दिख रहा। तो भगवान की कृपा से आप भौतिक भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद ये भी आदमी बोल रहे थे, लेकिन सच्ची भक्ति हम तब शुरू होती है जब हम भगवान से निष्काम भावना से सेवा करें और अधिक से अधिक उनकी अच्छे से सेवा करने का प्रयास करें। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल ही मैं इस बात को पढ़ रहा था कि जो हरिनाम जप है ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। पूरी कथा तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन गोप कुमार नाम के भक्त हैं और जगन्नाथ जी के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, जगन्नाथपुरी में बहुत आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं पर्सनली। और इस बीच में उनको अपने गुरु का दर्शन होता है, तो गुरु उनको याद दिलाते हैं कि आप ये मत भूल सोचिए या आप ये मत भूल जाइए कि जो आपको मंत्र मैंने दिया था, गोपाल मंत्र या भगवान हरे कृष्ण मंत्र कह लीजिए, उनने हरे कृष्ण मंत्र नहीं दिया था, गोपाल मंत्र दिया था, ये भगवान की बहुत गोहिया सेवा है, कृपया इसको आप नेग्लेक्ट मत करिए, ध्यान उसको नेग्लेक्ट मतलब समझते हैं आप लोग उसको, मतलब अवहेलना मत कीजिए। और इस मंत्र के उच्चारण से जो भी आपका संकल्प है वो पूर्ण हो जाएगा। तो आपको जो हरे कृष्ण मंत्र मिला है इसको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इससे सर्व हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद इस बात को समझा रहे थे, चाहे भौतिक सिद्धि आप चाहें और चाहे आध्यात्मिक सिद्धि चाहें, हर प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी इस हरे कृष्ण मंत्र से। तो ये समझना चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवत सेवा है और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से और बहुत सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें एक और उदाहरण आता है, यहाँ पे एक ही बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो बहुत सीधी सादी है तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लेकिन तो प्रायः छोटे बच्चे क्लास से बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो छोटे बच्चे अगर आप, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है, यहाँ नीचे शायद प्ले स्कूल चलता है, तो प्ले स्कूल का तरीका ये होता है कि बच्चों को खेल खेल में कुछ शिक्षा दे दी जाए। ऐसा नहीं बोलते प्ले स्कूल में, वैसे मैं प्ले स्कूल का टीचर नहीं हूँ लेकिन ऑब्जर्वेशन से मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। बच्चों को खेलने के बहुत सारे तरीके दिए जाते हैं और खेल खेल में उनको शिक्षा दे दी जाती है, तो जो 4-5 घंटे रहते हैं तो उतना उपद्रव नहीं करते। और अगर बोल दें कि भाई यहाँ 15-20 कुर्सियाँ हैं, बच्चों आप सब लोग बैठ जाओ, कुछ हिलना मत यहाँ से, कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चों की। समझ गया ना, सर्प वाला उदाहरण और बच्चों वाला उदाहरण। उसी प्रकार से जब भक्तों का मन, जब कह लीजिए कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और वो सेवा हमको अच्छी लगती है करना, तो अपने आप ही हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती, हमको वो भौतिक भोगों की तरफ लेने के लिए नहीं जाने देंगे। जैसे आज मैं जब लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तब मैं सोच नहीं रहा था कि अरे पिक्चर देखने कब जाऊँगा, हम ऐसे भी नहीं देख सोचते हैं प्रायः, भगवत कृपा से अहंकार नहीं करना चाहिए, माया की इच्छा कभी भी आ सकती है, बट जब हम सेवा में एब्जॉर्ब होते हैं तो भोगों के विचार अपने आप नहीं आते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस बहुत सिंपल से दूसरा एग्जांपल है, बोलना हम नहीं छोड़ सकते, भगवान ने गूंगा कर दिया एक अलग बात है, लेकिन हम बोलना नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और भक्तों से वो चर्चा करें तो हमको अलग सुख प्राप्त होता है, बल्कि सुख क्या, हम मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, इतना लाभ है। जितना समय हम यहाँ बिता रहे हैं आप और मैं दोनों लोग, उतना समय हम समय पास नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग जरूर रहा है, लेकिन हरि नाम करने से, जप करने से नहीं होता समय पास। इसीलिए हम लोग को लगता है घड़ी थोड़ा धीरे चल रही है, वो लगता है ना कि समय हो क्यों नहीं रहा है, 6 बज क्यों नहीं रहा है, 6:30 बजे अब तक। इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, एक भक्त को अपनी भक्ति की प्रगति इस प्रकार से टेस्ट नहीं करनी चाहिए कि जब विषय वस्तु आती हैं तो मेरे मन में क्या भावना आती है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग जानबूझ करके ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे जाकर के हमारी इंद्रियाँ भोगोन्मुखी हो जाएं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक डिस्को क्लब में, नाइट क्लब होता है, वहाँ पे लेक्चर के लिए बुलाया गया। प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, उन्होंने कुछ लेक्चर दिया, कीर्तन किया, फिर बोले दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर अ ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी ने भी ये बोला कि ये जगह जो है ये ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है, ऐसी जगह पे आकर के हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए आप कबड्डी खेल रहे हैं और आप बहुत, हम लोग बहुत सिकड़ी हैं और हम देख रहे हैं सामने सारे पहलवान हैं, तो फिर देखिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा वहां जाकर के, आप जानते हो कि क्या होगा। ये आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन देवामृत स्वामी के लेक्चर में सुन रहा था, अमेरिका में ऐसा बहुत बार हुआ, भक्तों ने बोला कि हम माया के अंदर घुस करके माया को शुद्ध कर देंगे, और फिर वो भक्ति से अडिस जीवन में गायब हो गए। तो इसीलिए आपको नहीं सोचना चाहिए आप लोगों के कंटेक्स्ट में कि आप लोगों के जो भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं उनके संग आप पिक्चर देखने जाओगे या उनसे मेल जोल बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है कि पूरी तरह माया से ना प्रभावित हों, लेकिन आपको जब करने में रुचि कम होने लग जाए या और बहुत सारी परेशानियाँ होने लग जाए। इसे उदाहरण दे रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, आप भक्ति के जीवन में बड़े आसानी से समझ जाएंगे। जब हम जब करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो ये काम क्रोध शांत होने लगते हैं। मैंने शब्द यूज़ किया है क्या, शांत। तो उदाहरण बता रहे थे भक्त बड़ा अच्छा, कि कोई बाघ है, बाघ समझते हैं, बाघ नहीं टाइगर, तो अगर बाघ सो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, देखो सो रहा है कुछ नहीं कर सकता है, मैं जाता हूँ उसको चींटी काटता हूँ, तो क्या ये बुद्धिमानी है? इंग्लिश में बोल रहे थे वो, डोंट मिस्टेक हाइबरनेशन फॉर टर्मिनेशन। जो इंग्लिश समझते हैं वो बड़ा अच्छा शब्द नहीं यूज़ करते, डोंट मिस्टेक हाइबरनेशन फॉर टर्मिनेशन। हमारी जो हृदय है उसमें काम क्रोध अभी दब जाता है नाम जब करते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि जो भोग के विचार आएंगे तो आप हरिदास ठाकुर की तरह वाह बस उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि ये गीता प्रवचन देने के सुनने के लिए एक फीस दीजिए। मुझे पता है कोई दे नहीं रहा है, लेकिन वो फीस ये है कि अपना केबल कनेक्शन काट दीजिए। ओ हम बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं, हमारा क्लास नहीं है। मैं आपके मन शायद ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं समझ नहीं पा रहे इस बात को, कितना कचरा हमारे मन में इस बात की तरह आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके पास धैर्य है तो हम दूसरे श्लोक की चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो